मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। लेकिन ऐसे डायलॉग बाज लोग भी रोते रहते हैं। कृष्ण ने डायलॉग बनाए नहीं, दिए नहीं, लेकिन श्री कृष्ण का जीवन तो ऐसा ही मुस्कुराकर गम का जहर पीना आ गया। अष्टमी को तो जन्म हुआ और कृष्ण के जन्म के निमित्त ही माँ बाप को जेल जाना पड़ा और अपने पहले 6 भाइयों को मौत के घाट उतरना पड़ा। ऐसा डेंजर जीवन, ऐसा भयावह जीवन। और जन्मे तो जेल में और जन्मते ही पराये घर लिवा गए लिए गए। आपको तो जन्मते ही टोकरी में कोई उठा के नहीं ले जाता है, शुक्र करो। इससे बड़ा भारी दुख तुम्हारे इष्ट को मिला तो मुस्कुराते रहे, तो तुम काय को रोते हो? मने आ नथी ने ते नथी ने, मेरा क्या करे, मेरा जॉब चला गया, मेरा बिजनेस में ये हो गया, मेरे को ये हो गया, वो हो गया। अरे जन्मते भांजे के पीछे पूरा राज और राज सत्ता कंस लग गया, तभी भी कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मेरा मामा कंस मेरे पीछे पड़ा, मैं तो मर गया रे, हाय रे, कभी नहीं किया। 17-17 बार जरासंध को धूली चटाकर भेजा, लेकिन 18वीं बार जरासंध एकाग्र होकर कुछ तत्परता से आए तो श्री कृष्ण को बलराम के सहित भाग जाना पड़ा। ऐसा नहीं कि भगवान है तो सफल ही सफल होते रहे। भगवान है तो अपने आप में है, तो उसमें भी वही तो भगवान है। कभी कोई भगवान जीतता है, कभी कोई भगवान की सत्ता काम करती है। इसलिए ये ना सोचो कि सेठ है तो धनी धन रहे, कभी निर्धन भी हो जाता है। सत्ताधीश है तो कुर्सी पे ही बैठा रहे, कभी कुर्सी उस पर बैठ जाती है। इसी का नाम तो दुनिया है। डॉक्टर है तो मरीज को ही देखता रहे, मरीज को चंगा करता रहे। अरे कई डॉक्टर मरीज बन जाते हैं। अमेरिका का डॉक्टर में क्या, कैसा तुम्हारा तो बहुत अच्छा है। अरे बोले थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले दांत में ट्रीटमेंट लेने गया था। अब तू डॉक्टर है, दांत की ट्रीटमेंट लेने गया था, क्या प्रॉब्लम है? ये है ये, अभी मैं क्या आराम है? बोले नहीं है। अरे नींबू का रस घस दे, अपने आप ठीक हो जाएगा, और अपना आश्रम का लाल मंजन रगड़ दे। डॉक्टर राजीव का समाचार है कि अब ठीक हूं। तो कभी तो आप डॉक्टर के भी डॉक्टर बन जाते, ऐसे आपका अंतरात्मा की दो लीला निराली है। ये डेंटिस्ट बैठे हैं, बाप बेटे बहू ससुरा सब, बापूजी आपका दांत चेक करे, अब अपना ही चेक करो, मेरे दांत बहुत बढ़िया रहते क्योंकि मैंने लाल मंजन रगड़ना चालू कर दिया, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, डॉक्टरों को मैं बता देता हूं। तो श्री कृष्ण डॉक्टरों के डॉक्टर है, वकीलों के वकील है, प्रेमियों के प्रेमी है, भक्तों के भक्त है, और चेलों के भी चेले हो जाते। गोपियों के आगे नाचना पड़े तो इतने वैभव के धनी नाचने में संकोच नहीं करते, और भागना पड़ा तो नंगे पैर कृष्ण भागे, बलराम चलो जान बचाए। जरासंध इस बार बहुत विकृत होकर आया है। अपन जूझेंगे तो और भी लोग मरेंगे, उनके भी अपने भी, चलो भाग चलो जान बचाओ। भागे तो ऐसे भागे कि पैर में चप्पल नहीं, पगत्राण नहीं, और ऋषि मुनियों के आश्रम में छुपके से सत्संगी के वेश में रोटी पाते रहे और सत्संग करते रहे और सेवा करते रहे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इसीलिए तुम कभी ऐसा ना सोचना कि हाय रे हाय हॉस्पिटल छूट गई, आश्रम में रहना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। तुम्हारे ताऊ के ताऊ, बाप के बाप कृष्ण ने भी किया है, तो आपको करने में क्या फर्क पड़ता है? नारायण हरि, नारायण हरि। अब शिष्य के शिष्य कैसे कृष्ण? भाई श्री कृष्ण बोलते कि गाय तो चरती रहे, लेकिन अपन कुछ करें तो ये ऋग्वेद में लिखा है कि जीवन में नृत्य भी होना चाहिए। हाथ कब कैसा लंबा करना चाहिए? घुंघरू 2 पैर के बजे कि 1 पैर के बजे, 2 घुंघरू बजे कि 10 बजे, हाथ की उंगलियां कैसी मुड़नी चाहिए, आंख किधर देखे, कमर किधर कहो, ये सब व्यवस्था है हमारे वेदों में। हमारा वैदिक ज्ञान केवल अल्लाह की नमाज पढ़ो और बिस्त का इंतजार करो ऐसा नहीं है। जीते जी अल्लाह हो आत्मा स्वरूप तुम्हारे साथ में, उसके आनंद की झलकें जगाओ, आप भी आह्लादित रहो, आनंदित रहो, औरों को भी आह्लादित और आनंदित करो। श्री कृष्ण के प्रेम आनंद का ऐसा जीवन है कि और देवों के जीवन में तो गाय बंद ही रहती है, लेकिन इस देव के जीवन की गाय खुली रहती है। और देवों को तो मनाना पड़ता है, लेकिन ये देव हमें मनाने को राजी है। और देव के पास तो जाना पड़ता है, लेकिन ये देव हमारे पास अपने आप आता है। और देव को तो बुलाना पड़ता है, भोजन करने आओ, और ये देव तो आकर बैठ जाता है, क्या बनाए, लाओ जरा दे दो। आके वो देव वैष्णव नो देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय,
वासुदेवाय,
कृष्ण देवाय,
कृष्ण देवाय,
मधुमेह देवाय,
मधुमेह देवाय।
अब वो देव दुनिया को चलाता है, लेकिन बापू के द्वारा खुद चलने को राजी है। अभी रिमोट कंट्रोल से वो देव मटकियां फोड़ने लगेगा। और कोई बड़े आदमी को ऐसा ऑर्डर में चलाए तो चिल्लाए कि मेरा अपमान करते हो, तुम्हारे हाथ रोक दूंगा, पैर रोक दूंगा, मैं ईश्वर हूं। लेकिन इस देव को ऐसा कोई खतरा नहीं है, मैं ईश्वर हूं तो एक शरीर में नहीं हूं, बापू के शरीर में भी हूं और बेटों के शरीर में भी हूं, मेरा ही सब स्वरूप है। कितना स्वतंत्रता देने वाला देव है। किसी बड़े आदमी पर रिमोट कंट्रोल चलाओ तो बोले है मैं चला गया और मेरे लिए रिमोट कंट्रोल से ऐसा करते हो, तो अब देखो कैसे तुम कथा करते हो, तुम्हारी जीभ को पैरालाइज कर देंगे, तुम्हारे हाथ को ये कर देंगे। लेकिन ये देव की ताकत नहीं ऐसा करने की, क्योंकि ये देव तो जानता कि सब मेरा स्वरूप है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुआ। तो ये देव अपने साथियों को बोलता है कि भाई नृत्य कला भी जीवन में चाहिए, हास्य कला भी चाहिए, वीर रस भी चाहिए, श्रृंगार रस भी चाहिए, ये सभी रसों में व्यक्ति को निपुण होना चाहिए। और सारे रस जिस रस से उत्पन्न होते हैं उस परम रस को भी पहचान लेना चाहिए। रसो वैस वैश्वानरो, वह परमात्मा ब्रह्म रस स्वरूप है, वो अपने आप में रहता है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जब बुद्धि में रहता है तो अंतर्यामी प्रेरक प्रभु है। बुद्धि राग और द्वेष रहित होती है तो वो प्रेरक वासुदेव है, और जब मन में रहता है तो इष्ट देव बन जाता है। मन से ध्यान करो तो वो इष्ट देव है, बुद्धि से राग द्वेष छोड़ो तो वो अंतर्यामी परमात्मा है, और तत्त्व से देखो तो सर्वत्र भरपूर वासुदेव है। और सर्वत्र भरपूर है तो हर ग्वाल और गोपियों में, गाय और बछड़ों में भी तो है, तो बछड़ों को भी अपनत्व से वो देखते हैं, तो बछड़े भी उनको अपना मानकर देखे उनका जी नहीं भरता, गायों को भी अपनत्व से देखते हैं। ऐसी कला जिस संत में है और संत भी अपनत्व से देखते हैं तो सत्संगी भी उनको देखते देखते अघाते नहीं है। ये आत्म विद्या है, आत्म नजरिया है, ये कैसा ऊंचा नजरिया है। हरि ओम 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 शिव 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 कृष्ण 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 गोविंद गोपाला नंद घेर आनंद दाता। हर जीव नंद है और हर जीव के हृदय में आनंद देने वाले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। वृंदावन में नारायण स्वामी हो गए, उनकी शिष्या अमृतसर से आती और वो कुबड़ी थी, कुबड़ी कुछ पैसे खर्चा करने की वृत्ति वाले थे। वृंदावन में रासलीला कंपनियां मंडल होते थे, उन छोरों को बुलाते, उसमें कोई छोरा कृष्ण बनता है तो कोई गोपी बनता है तो कोई ग्वाल बनता है तो कोई नंद बनता है, ये सब परंपरा चलती है। इस परंपरा के अनुसार वो कुबड़ी बाई वृंदावन में सावन के महीने में नारायण स्वामी के आश्रम में ठहरी और रामलीला वाले और कृष्ण लीला वालों को हर साल करवाती थी, बुलाया। वो छोरा जो कृष्ण लीला करता था वो बड़ा चपल था, उसकी कृष्ण लीला देखते देखते वो कुबड़ी नारायण स्वामी की शिष्या भाव विभोर भर गए हो गई। और कृष्ण लीला में जब श्री कृष्ण व्रज से मथुरा जाते और रास्ते में कुबड़ी मिलती है और फिर कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे अंगराग दे, ओ सुंदरी अंगराग दे, सुंदरी नहीं सुनती, ओ सुंदरी अंगराग दे, सुंदरी ने देखा कि और तो कोई है नहीं, सुंदरी मुझे ही कह रहे हैं तो सुंदरी का भी चैतन्य तो सुंदर है, बोल सुंदर क्या चाहिए। लो कृष्ण ने कहा लो अंगराग दे दो, लो 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 लगाओ। ले तो जा रही थी कंस के आगे, लेकिन प्रेम देवता के आगे धन और सत्ता कोई माना नहीं रखती। आप अभी प्रेम देवता के प्रेम से तो बैठे, धन के प्रलोभन अथवा सत्ता के भय से थोड़ी आए, ये प्रेम देवता की तो प्रेमा भक्ति से आप बैठे हैं, पावन हो रहे। वो कुबड़ी प्रेम में भर गई लो, और श्री कृष्ण ने उसका अंगराग लिया। अब कुछ लेते हैं ईश्वर तो देने के लिए, कुबड़ी के पैर पर पैर रखा, ठोड़ी को झटका मारा और कुबड़ी हो गई सुंदरी। वो दृश्य जब वो वृंदावन का छोरा कृष्ण बनकर दिखा रहा था तो नारायण स्वामी की शिष्या उस छोरे को साक्षात कृष्ण रूप मानकर प्रभु इस कुबड़ी को ठीक कर दिया, तो मैं भी कुबड़ी हूं, मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते। माधव केशव हे कृष्णा हे कृष्णा। और उस छोरे को भी क्या सूझा कि सचमुच जो कुबड़ी थी उसके पैर पे पैर रखा और मारी छोटी को झटक को ठीक ठाक हो गई। नारायण बापू की जय। मानना पड़ेगा कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने से, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने से, ईश्वर की सत्ता का आदर करने से अंतर्यामी ईश्वर अथवा तुम्हारा मन में आया तो ईश्वर इष्ट देव है, बुद्धि में आया तो ईश्वर तुम्हारा अंतर्यामी है, और बाकी विभू व्याप्त है तो ईश्वर ब्रह्म है। कब किस रूप में ईश्वर तुम्हारे द्वारा क्या लीला कर दे, उस वृंदावन के कमा के पेट भरने वाले छोरे को तो पता भी नहीं होता है कि कुबड़ी में से सुंदरी कैसे बनती है, लेकिन वो तो नाटक की कुबड़ी को तो सुंदरी बना दिया, ये सचमुच में कुबड़ी को भी ठीक ठाक कर दिया। ये कैसी भगवान की सत्ता है, बिल्कुल घटित घटना है। तो इस भगवान की सत्ताओं का सत्संग लीला आस्वादन करते करते आपको संसारी जो सुख है उसे कहते हैं ऐन्द्रिक सुख, विषय विकारों का सुख। आंख देखने के सुख के पीछे घसीटती है, नाक सूंघने के पीछे, जीभ चटोरेपन के पीछे, तो महाराज त्वचा स्पर्श और सेक्स के तरफ तुम्हारे को गरकाव करती है। कि जब भगवान की लीला सुनते हो, भगवान अगर साकार होकर प्रकट नहीं होते तो हम भी भगवान को निराकार निराकार मानते हुए जाते चर्च में, मत्था टेकते जाते मस्जिद में, नमाज पढ़ लेते और बाद में मजा लेने के लिए शराब कबाब और क्या क्या करते। हमारे जीवन में वो रस नहीं आता, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है और भगवान साकार रूप में आते तो उनकी लीलाओं का चिंतन करते करते हम चिन्मय सुख के अधिकारी हो जाते हैं। देखने सूंघने चखने विकारी सुख में जीने वाले जीव भी निर्विकारी नारायण की भक्ति का, कीर्तन का, ध्यान का और इश्क इलाही, इश्क मिजाजी, इश्क नूरानी, जो हिंदू धर्म में प्रेमा भक्ति अनुरागा भक्ति पराभक्ति है, वही इस्लाम धर्म ने स्वीकार कर दिया। इश्क इलाही, इश्क नूरानी, इश्क मिजाजी। तो हमें वो इश्क नूरानी, इश्क मिजाजी, इश्क इलाही, प्रेमा भक्ति, अनुरागा भक्ति, पराभक्ति का हमें सु अवसर मिलता है। श्री कृष्ण ने बचपन में अपने किसी ग्वाल को कहा कि भाई तुम नृत्य कला में होशियार हो तो मुझे नाचना सिखा दो। तो बोले ऐसे कोई सिखाएंगे क्या, गुरु बनाओ तब। अरे बोले गुरु महाराज, पत्रम पुष्पम दे दिया, गुरु महाराज मुझे सिखाओ। बोले चलो चेला जी। ओ चेला जी चले, गुरु महाराज सिखा रहे हैं, अब हाथ ऐसा करो, हाथ ऐसा करो, फुर्ती से करो, ये करो वो करो, ये करने वे करने में श्री कृष्ण से हो गई चुक और गुरु महाराज ने लगा दी थप्पड़ तुम्हारे गुरु को। ग्वाल ने लगा दी थप्पड़ कृष्ण जी को, तो दूसरे ग्वाले जो कृष्ण को प्रेम करते वो रूठ गए, ये काय को मारा कृष्ण को। अरे बोले नाचता नहीं, सीखना आया तो फिर आज्ञा माननी चाहिए। अरे बड़े आया तू आज्ञा करने वाला, कृष्ण को क्यों मारा। वो सब रूठ गए तो कृष्ण भी उनके पक्ष में रूठ के बैठ गए। अब वो आया ग्वाला, बोले तुम तो नृत्य सीखने को मुझे गुरु माना था। तो बोले तुम तो हो ही हो गुरु, तो तुम मेरे को गुरु मानते हो कि हाँ, गुरु की गुरु मानते हो मेरे को कि हाँ मानता हूं, तभी तो तुम्हारे कहने में मैंने किया, जरा सा हाथ इधर उधर हुआ तो तुमने थप्पड़। अरे तो गुरु मानते हो ना। बोले हाँ मानते, तो गुरु की बात मान लो। बोले कहो गुरु जी क्या बात है। बोले चलो उठो हमारे साथ नाचो। बोले चलो नाचते, कैसा चेला है, अभी तो रूठ के बैठा है और बोलता तुम मुझे गुरु मानते हो कि नहीं मानते हो। क्या मानता हूं तो मेरी बात मानो, उठो भूल जाओ जो हुआ, नाचो। नाचने लग गए, सीखो, सीखने लग गए। श्री कृष्ण के जीवन में बुद्धि का जितना आदर है गीता में और किसी मजहब में नहीं। मनुस्मृति है, ग्यारस को एकादशी क्यों करे, दशम को क्यों ना करे। बोले मनुस्मृति में लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, ऐसा करना चाहिए। एकादशी को चावल खाने से पाप लगता है, एक एक चावल कीड़ा खाने जितना पाप लगता है। बोले ये कैसे, बोले लिखा है। साइंटिफिक तो एक और कोई है कारण, लेकिन लिखा है धर्म कुरान में, बाइबल में आप पढ़ के देखो तो बुद्धि ग्रंथ में जो लिखा है वो मानने के लिए बुद्धि काम आती है। लेकिन यहां श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग उपाश्रित, बुद्धि का बड़ा आदर कराते। सम दुख सुख स्वस्थ, दुख और सुख आए, आप अपनी बुद्धि को डामाडाल होने मत दीजिए। आपकी बुद्धि में समता रहेगी तो विश्व नेता परमेश्वर तुम्हारा अंतर का प्रेरक रहेगा, अंतर्यामी ईश्वर होगा। उस अंतर्यामी ईश्वर के लिए श्री कृष्ण कहते तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारता तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्तिसि शाश्वतम। जगत की कोई उपलब्धि शाश्वत नहीं, लेकिन तुम उस मेरी शरण जाओ तो कहीं बोलते हैं बुद्धि की शरण जाओ, और कहीं कहीं अपने बुद्धि में भी प्रेरक अंतर्यामी हूं तो मेरी शरण आओ। तमेव शरणम गच्छ, तुम उसकी शरण जाओ, अंतर्यामी की शरण। और वो अंतर्यामी जानता है कि बुद्धि राग द्वेष से रहित होगी तो उसकी शरण माना, वही मैं और मैं वो मैं। तो कितना निकट और कितना सहज में तुम्हारा ईश्वर दिखा देते हैं वो साकार ईश्वर। निराकार को जानना है तो भी, और साकार को जानना है तो भी, और इष्ट देव में प्रकट करना है तो भी। निराकार को जानना है तो फिर इष्ट देव को किनारे रख दो, निर्गुण निराकार कैसे उसके बारे में सुनो और उसी प्रकार का ध्यान करो और उसी प्रकार के ग्रंथ पढ़ो तो निर्गुण निराकार का साक्षात्कार होगा। बुद्धि को राग द्वेष से रहित कर दो तो अंतर्यामी की प्रेरणा होगी, और फिर आपका मंत्र, आपका बोलना, आपका विचार अथवा आपका मार्गदर्शन लोगों का भला करने वाला होगा अंतर्यामी की प्रेरणा से। लेकिन आपको इष्ट देव का दर्शन करना है तो जिस इष्ट देव को मानो उसका ध्यान करो तो मन में ही वो परमात्मा इष्ट देव के रूप में आ जाएंगे, और इष्ट देव को मानकर फिर इष्ट देव की बात काटते हो तो इष्ट देव आपकी मान्यता का ऑपरेशन करने के लिए भी आ जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने गीता का अनुवाद करना चालू किया, उसमें श्लोक आ गया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। उसका योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। श्रीधर को दया आ गई कि भगवान मेरे इष्ट देव लोगों का योगक्षेम वहन करें, ये कैसे हो सकता है? योगक्षेम तो देते हैं, वहन क्या करेंगे? वहन तो मजदूरी का काम है। मेरे तो इष्ट देव ने गलती से कह दिया होगा, वो इष्ट देव की गलती मानकर उस शब्द पर लकीर मार के स्नान करने गए, और इष्ट देव नन्हा मुन्ना गिंगरुले बाल वाला सांवली सूरत श्रीधर की पत्नी को कहता कि माताजी माताजी डिब्बा लाओ, ये खिचड़ी उतरवाओ। डिब्बे में डाला तो पूरा डिब्बा भर गया, हरी दाल मूंग की और चावल खिचड़ी कही जाती। तुम्हारे घर में खाना नहीं था, मैं वहन करके आया हूं। बेटे तुम्हें कैसे पता चला? मैं ध्यान रखता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? बोले कुछ भी रख दो। तुम्हारा बाप कौन है? माँ बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाओ। कैसा सस्ता देवता है, कोई भी माँ बाप बन जाओ, वसुदेव देव की बन जाओ, नंद यशोदा बन जाओ, दशरथ कौशल्या बन जाओ, और भी कई कपिल और ये भी माँ बाप अलग बन गए। अपने मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दी है तुम्हारे हिंदू सनातन धर्म के देवता ने कि आप मेरे माँ बाप भी बन जाओगे तो कोई बात नहीं। प्रातः समय उठ रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माथा। सुबह उठकर जगत नियता माता पिता और गुरु को प्रणाम करता है, बेटे और शिष्य का कर्तव्य निभाता है। राम की गाय तो बंधी रहती है, शिव की गाय तो बंधी रहती है, लेकिन कृष्ण की गाय जाओ खूब खाओ पियो, बंसी बजे तो अपने आप खींच के आओ। खींच के लाऊंगा नहीं, तुम्हारे अंदर प्रेम है, जहां से प्रेम की सरिता है वहां खींच के चले आते। चंद्रमा किसी को नोता थोड़ी भेजता कि आज पूर्णिमा का आनंद ले लो, आह्लाद ले लो, आज दशम का चांद देख लो, नवम का चांद, अपने आप आते। मधुमक्खियां किसी को आमंत्रण थोड़ी देती, मिठास के ऊपर लोग खींच के चले जाते। ऐसे तुम्हारे सत स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव को जगाओ, और इंद्रियों को खाने की जगह पे खाने दो, बैठने की जगह पे बैठने दो, सोने की जगह पे सोने दो, और जब चाहिए तब अपने आत्मरस में ले आओ। उठत बैठत वही उठाने कहत कबीरम, उसी ठिकाने। कैसा अद्भुत योग है, कैसा अद्भुत संदेश है, कैसा अद्भुत जीवन है। जन्माष्टमी का उत्सव मनाने से आपके जीवन में सुख दुख में सम रहने का संदेश साकार होता है। आपके जीवन में छुपा हुआ जीवनानंद, जीवन को आनंदित करने वाला जीवनानंद प्रकट करने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं रसिया गीत गा गा कर नंद घेर आनंद भयो करके हैशो ऐशो करके थका कर दूसरे दिन नवम को पड़े रहे, इसलिए जन्माष्टमी नहीं है। जन्माष्टमी तो हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिल गिरी बाबा। अष्टमी को पूतना जहर लेकर आती है, कृष्ण फरियाद नहीं करते। एक महीने के कृष्ण होते न होते और महाराज छटकासुर आ जाता है, फिर कभी धनकासुर, कभी बकासुर, कभी अगासुर, अजगर के पेट में चला जाना पड़ता है। मामा के इतने इतने साजिशों के शिकार होने वाले श्री कृष्ण कभी माँ को कहते नहीं कि मामा ऐसा क्यों करते, मैंने क्या बिगाड़ा है, नहीं होता है। इसी का नाम दुनिया है। तो श्री कृष्ण सिखाते कि आप फरियादी मत बनिए, पलायनवादी मत बनिए, और आवेशी बनकर अड़ियल भी मत बनिए। जरूरत पड़े भागने की तो भाग कर भी अपना काम निपटा ले। 17 बार जिसको परास्त किया, 18वीं बार उसे परास्त होना पड़ता है राणा छोड़ो राय की। और फिर साधु संतों के यहां से भोजन पाते, सत्संग सुनते सुनते किसी पर्वत पर रहे, और शत्रुओं को पता चला कि दोनों भाई पहाड़ी गुफाओं, पर्वत को चारों तरफ से घास भूस लाद के लगा दी आग। हाँ, ये ज्वालाएं उखड़ने लगी, कैसे भी उन ज्वालाओं में से बच बचाकर निकले और जाके समुद्र के बीच द्वारका बसाया। तो जीवन में तो ये आएगा, विघ्न बाधा अनुकूलता प्रतिकूलता, ऐसा थोड़ी कि मक्खन मिश्री खिलाने वाली गोपियां ही सदा बनी रहेगी। या लाड प्यार करने वाले माँ बाप या मित्र या सखा या संबंधी सारे ग्रह एक जैसे बने रहेंगे तो जीवन अविकसित रहेगा। जीवन में तो ये वीर रस, हास्य रस, उदार रस ये सब होने ही चाहिए। अगर ऐसा जीवन आप स्वीकार नहीं करते तो आप जीवन के संग्राम में बुरी तरह हार जाओगे और भयभीत मन फिर नीच योनियों में चला जाएगा। श्री कृष्ण ऐसे प्रेम के देवता हैं कि उनके हिंदू तो भक्त है लेकिन मुसलमानों ने भी फायदा लेने में कमी नहीं रखी। रहमान खान खानन उनके प्यारे भक्त और कृष्ण उनके आगे प्रकट हो जाते, उनके साथ बातचीत करते। रैहाना तैयब, अकबर की ताज और भी कई लोग, कई अंग्रेज लोग वृंदावन में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर बड़े बड़े ऑफिसर लोग भक्ति करते और श्री कृष्ण उनके भाव के अनुसार इष्ट देव के रूप में उनके मन में प्रेरणा देते, इष्ट देव से आगे चले जाते तो अंतर्यामी होकर प्रेरणा देते। ऐसे कई दृष्टांत है, कई अंग्रेज भक्तों की कथाएं कहानियां मैंने कही हुई है। तो श्री कृष्ण का जीवन विघ्न बाधाओं के सिर पर नृत्य करने वाला जीवन है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण के बेटे और पोते बड़े आज्ञाकारी थे, श्री कृष्ण को कुछ का कुछ सुना देते। कभी तो उद्दंड छोरे श्री कृष्ण को मारने तक को दौड़ते, लेकिन कृष्ण ने कभी फरियाद नहीं की कि आ मारो बेटो, आओ जे मने मारवा दौड़े रे बाप लिया हूं तो मरी गयो, मैं तो आया था सुख शांति देने और मेरे बेटे मेरा कहना नहीं मानते। जब कृष्ण के बेटे कहना नहीं मानते और कृष्ण मधुमय बंसी बजाकर मस्त रहते हैं तो तुम्हारा बेटा कहना माने तो क्या, न माने तो क्या, तुम्हारी मंगलमय दृष्टि होनी चाहिए। और ऐसा कोई बाप देखा तुमने कि अपने अपने जीवन काल में अपने बेटे और अपने पोते और प्रपोते सारे यदुवंशी लड़कर मर जाए और फिर भी बंसी बजती रहे, ये कैसी समता है। कितना प्रेम करने वाले गोल और गोपियां उनको छोड़ दिया तो छोड़ दिया अनासक्त, और बेटे बेटियां और पुत्र पौत्र ये जो यदुवंश नाश होता है तो होता है, अष्टदा प्रकृति में होता है। तुम्हारा बाप नुश हो जाए, जो होता है पांच भूतों में होता है, खिलवाड़ में होता है, फिल्म की पट्टियों में होता है, इसमें दर्शक के लिए सब लीला है। तो किसी बात को इतना सीरियस मत लो कि टेंशन हो जाए, हाई बीपी हो जाए, लो बीपी हो जाए अथवा तो हार्ट अटैक हो जाए। ऐसी मुसीबतों को पालो नहीं, पोषो नहीं, कृष्ण के सिद्धांत को ले आते तो भारत में हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक की बीमारी आई नहीं सकती। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? बोलो वाह वाह प्रभु वाह, वाह कानूड़ा वाह, वाह कानूड़ा वाह, वाह प्रभु वाह। तो जीवन में हास्य भी चाहिए, नृत्य भी चाहिए, भाव भी चाहिए, रंग भी चाहिए, कभी कुछ जीवन सर्वांगी होना चाहिए और फिर सबसे निराला तुम्हारा आत्म सुख से संपन्न। अर्जुन दुखी हो गए थे, श्री कृष्ण का साकार दर्शन कर रहे थे लेकिन श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप में आत्म रूप में नहीं जाने थे। श्री कृष्ण उनके सुहृदय ये मानते थे फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। अर्जुन दुखी थे तो श्री कृष्ण बोलते विसृज्य शरणम चापम शोक संविता मानसा। अर्जुन का दुख कैसा है? बोले मानसिक दुख से ऐसा भरा हूं कि सारी मनोवृत्तियां, मन के आकार, मन के प्रकार, मन के संस्कार विकार शोक से सिगण है, दुख से निराश हो गया, उत्साह ठंडा हो गया। कृष्ण कहते हैं ये नहीं चलेगा, दुख से दुखी हो जाओ, निराश हो जाओ, हताश हो जाओ, उत्साह ठंडा हो गया तो फिर तो तुम मर गए। तमेव शरणम गच्छ, तुम उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण जाओ। गतिर भर्ता प्रभुर साक्षी निवास शरणम सुहृत, जो सबको गति देता है, सबके मन का साक्षी है, जो सबके अंतर में निवास करता उसकी शरण जाओ। तमेव शरणम गच्छ, ईश्वर की शरण में जाओ। अथवा तो मामेकम शरणम रज, मैं तो मुझ एक की शरण आ जाओ। चार प्रकार की शरण, एक तो गति शक्ति देने वाला, दूसरा इष्ट, तीसरा सर्वांतर्यामी और चौथा मैं तुम्हारे सामने जो मैं कहूं ऐसा करूं। मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान की शरण जाने से अर्जुन को हुआ, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध हुआ, उपदेश सुना मेरा मोह नष्ट हो गया। तव प्रसादा, तुम्हारी शरण आया उसी के प्रसाद से। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात मया अच्युत स्थिरो अस्मि, अब मैं स्थिर हो गया। कि मरना मारना सब खिलवाड़ है, सुख दुख सब खिलवाड़ है, हार जीत सब अष्टधा प्रकृति में है। पुण्य पाप भी जब तक इंद्रियों में है, मन में है, तब जब बुद्धि योग होता है तो पुण्य पाप को आदमी लांग जाता है। जीवन इसीलिए मिला है बुद्धि योग। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव, आप बुद्धि योग की उपासना करो। बड़े पीर की भक्ति तो कर करके मर गए कहीं, बड़े देवता ये सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन आप अपनी बुद्धि की शरण जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतः तत्प्रसादात परम शांति, परम शांति को उपलब्ध हो जाओ। और ये आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बुद्धि योग तो आपके व्यवहार में दिन में दसों बार आएगा। मिर्ची ज्यादा डाल दी, नमक ज्यादा डाल दिया, कम हाय 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 नहीं, हरी हरी हो गया तो हो गया, हाय हाय काय को करते। तपेली गिर गई तो गिर गई, हाय तपेली गिर गई, अरे काय को रोती, गिर गई तो गिर गई, फिर से उठाओ आगे बढ़ो, कपड़ा फट गया इसने मेरे को ये कहा, अरे जो हुआ सो हुआ। समत्व योगम उच्चत, कितना भी सुखद अवस्था है आसक्त मत हो, मैं सुखी हो गया, मैं खुश हो गया, व्यवहार काल में थैंक यू धन्यवाद कर दो, लेकिन अंदर से समझो ये भी एक स्वप्न है। सुख भी स्वप्न है, दुख भी स्वप्न है, सफलता भी स्वप्न है, विफलता भी स्वप्न है, धनी होना भी स्वप्न है और निर्धन होना भी स्वप्न है, चीकू खाना भी स्वप्न है और जामफल खाना भी स्वप्न है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। इस प्रकार उस परमेश्वर स्वभाव का चिंतन करो, ज्ञान प्राप्त करो, प्रतिदिन ध्यान करो, उस ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो, फिर तुम व्यवहार जगत में इंजीनियर डॉक्टर जो भी हो अच्छे जगह पे तुम्हारे कदम पड़ेंगे। ऐशो ऐशो करके मजदूर मत बनो, अपने आत्मा में विश्रांति लो। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, ध्यान के समान कोई दान नहीं। इसीलिए हे पार्वती तस्मात ध्यानम समाचरित, शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई और ध्यान की महिमा गवाई बताई। और पार्वती जी ध्यान करती है, नील वर्ण दिखता है, प्रकाश दिखता है, कभी शरीर में कंप होता है, जाओ अपने गुरु से पूछो। गुरु ने कहा सती ये जब अंतरात्मा की चेतना जगती तो ये प्रकृति में होता है, रजोगुण की प्रधानता से रंग बेरंगी रंग दिखते हैं, सतोगुण की प्रधानता से प्रकाश दिखता है, लेकिन ये सब गुण है। तुम और जैसे शिव जी निर्गुण नारायण स्वभाव में जगे ऐसे आगे बढ़ो। पार्वती जी ने अपने गुरुदेव की बड़ी भारी महिमा गाई। ऐसा नहीं कि शिव जी है तो चलो फिर गुरु जी को क्या करना, गुरु जी है तो शिव जी को क्या करना है। शिव जी के आगे शिव जी का नाता है, गुरु जी के आगे गुरु जी का नाता है, और गुरु और शिव में जो एक है उससे अपनत्व का नाता है। तो अपने अपने नाता के अनुसार स्वांग करो। पुत्र हो तो पिता के आगे पुत्र का स्वांग करो, पिता हो तो पुत्र के आगे स्वांग करो, पत्नी हो तो पति के आगे, पति हो तो पत्नी के आगे अपना कर्तव्य निभाओ। लेकिन उठत बैठत ओई उठाने कत कबीर हम उसी ठिकाने, माँ के आगे बापू बेटा है और तुम्हारे आगे तुम्हारा बापू बाप है। ऐसा थोड़ी कि बापू बाप है तो माँ के आगे भी जाके, माँ तो मेरे को गुरु मानती लेकिन मैंने तो अपना बेटे का कर्तव्य निभाना है, वो चाहे कुछ माने। अपना कर्तव्य निभाओ और फल की इच्छा मत रखो, बस कृपणा फल हे तवाह। हे अर्जुन तू अपनी हृदय की दुर्बलता छोड़ और कृपण मत बन, जो फल की इच्छा करते हुए कृपण है, अपनी योग्यताओं का गला घोंट देते। कर्तव्य कर्म कर। लालच से आकर नहीं, लोभ से आकर नहीं, द्वेष से आकर नहीं, समत्व में कर्तव्य कर्म कर। मैं तो कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, बिल्डर हूं, तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा वैसा, ये 40% ऊपर से 45% तो करना पड़ेगा। नहीं, तुम जैसा अपना हित चाहते हो ऐसे ग्राहक का हित चाहो, फिर देखो तुम कितने उन्नत हो जाते हो। और बिल्डरों को थोड़े पैसे मिलते लेकिन अशांति के कारण दारू पीना पड़ता है, तुम्हें आत्मदारू ऐसा मिलेगा कि तुम बिल्डरों के बाप बन जाओगे, उपदेशकों के बाप बन जाओगे, बड़ों बड़ों के भी बाप बन जाओगे, बापू तत्व में टिक जाओ। और ऐसी श्री कृष्ण की जयंती दिवस का महोत्सव बड़ा दुर्लभ है। इन दिनों में कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और चित्त भगवान के प्रसाद जा वाली मति बना देता है। जन्माष्टमी जयंती और ये उत्सव संस्कृति के समृद्धि संरक्षण में बड़ा योगदान देते हैं। भगवत सत्ता के प्रति आशा और विश्वास जगाते हैं। अपने कर्तव्य और तटस्थता, उदारता और बहुजन हितायता की मति में बड़ी पुष्टि देते हैं। भगवान की जयंती और महापुरुषों की जयंतियों ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है। चार संस्कृति प्राचीन, यूनान की संस्कृति प्राचीन, रोम की प्राचीन, मिस्र की प्राचीन और भारत की संस्कृति प्राचीन, और तीन संस्कृतियों को तो धर्मांतरण वालों ने अजायब घर में धकेल दिया, लेकिन भारतीय संस्कृति को धकेलने वाले खुद मौत की खाई में धकेले गए। सब मिट गए जहां से, भारतीय संस्कृति को मिटाने वाले सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान भारत का। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है हरामखोर जमाना, जोरे जहां हमारा। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, हरिद्वार का नाम हरामियों ने हड्डी द्वार अंग्रेजों ने रख दिया, और अयोध्या का नाम फिरोजाबाद रख दिया, फिर भी कोई हड्डी द्वार नहीं जाता। अभी करोड़े तुम्हारे माए बाप हरिद्वार में ही गए थे। तो ये जयंतियां और संतों की सजागता अभी तक हमारी भारतीय संस्कृति को आनंद देने वाली संस्कृति को, आह्लाद देने वाली संस्कृति को, सुख दुख में सम रहने वाली संस्कृति को, भगवान को साकार रूप में प्रकट करने वाली संस्कृति को, भगवान को अपना सगा संबंधी मित्र सखा पुत्र पिता गुरु दाता बनाने वाली संस्कृति धरती से गई तो मानवता नष्ट हो जाएगी। केवल भारतीय संस्कृति की रक्षा मानवता की रक्षा है, विश्व की रक्षा है। और कल्चर और मजहब, किसी न किसी व्यक्ति ने, कोई ईश्वर के पैगंबर ने तो कोई ईश्वर के बेटे ने चलाए, लेकिन भारतीय संस्कृति किसी ऋषि मुनि अथवा भगवान कृष्ण और राम जी ने नहीं चलाई। ये तो सनातन संस्कृति है, इसमें अवतार आते और अपनी लीला करके फिर कहीं, जैसे अंगारों पर राख जम जाती तो फूंक मार के फिर चमचमा देते, ऐसे संतों का जयंती और भगवान की जयंती हमारी संस्कृति पर जो कुछ कचरा पट्टी है फूंक मार के हटा देते, बाकी हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है। सूरज कौन से दिन बना, कब बना, उसका तो विज्ञानी पता लगाने की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म की कल्पना ही कल्पना रहेगी, वास्तव में सनातन धर्म है। आपके 432,000 वर्ष बीते तब कलयुग होता है, कलयुग का आयुष्य है 864,000 द्वापर, इससे तिगुना त्रेता, उससे चार गुना सतयुग, 43,32,000 वर्ष बीतते तब एक चतुर्युगी बीतती है। ऐसी 71 चतुर्युगी बीते तब एक मन्वंतर होता है, एक 14 मन्वंतर बीते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसा ब्रह्मा जी 50 वर्ष पूरे हो गए इस कल्प के, 51 में दिन के प्रथम चरण में है और ये कलयुग का प्रथम चरण है। 5232 वर्ष हुए और ऐसे ब्रह्मा जी धरती पर बालू के कण गिन सकते हो, लेकिन ब्रह्मा जी कितने होकर चले गए नहीं गिन सकते हो। ऐसी तुम्हारी प्राचीन संस्कृति है और तुम्हारी संस्कृति के ऋषियों ने खोज कैसी की है कि आपके शरीर में 72 करोड़, ध्यान से सुनना, 72 लाख 10,000 201 नाड़ियां हैं। उसमें 10 नाड़ी मगज के दाहें तरफ, 10 बाहें तरफ, 20-21 नाड़ी तालु में। आप तालु में जीभ लगाकर पढ़ते, याद करते या ध्यान करते, वो स्थायी स्वभाव बन जाता है। और 22 नाड़ी है ब्रह्मचर्य पालन करके ब्रह्म ज्ञान सुने तो ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जो सारी सृष्टि का संचालन तत्व है उसका भी तुम साक्षात्कार कर सकते हो। जैसे ब्रह्मा जी ने साक्षात्कार किया, विष्णु जी ने किया, शिव जी ने किया, कृष्ण जी ने किया, राम जी ने भी किया, कबीर जी ने भी वही साक्षात्कार किया, वशिष्ठ ने भी वही किया और तुम और हम वही कर सकते हैं। कितनी उदार संस्कृति में तुम्हारा जन्म हुआ है। और मजमों में तो आया है कि कुरान में लिखा है आप मान लो, बाइबल में लिखा है आप मान लो, हिंदू धर्म में भी मनुस्मृति में लिखा है, धर्म ग्रंथ में आप मान लो, लेकिन गीता कहती है नहीं, आप जान भी लो। बुद्धि का आदर गीता ने जितना किया है और मनुष्यों को, भक्तों को गीता ने जितनी स्वतंत्रता दी है, साहस दिया है, शक्ति जगाकर सर्वोपरि बनाया है, ऐसा शायद किसी ने किया हो, मुझे ध्यान में नहीं है। ग्वाल को गुरु बनाते और गुरु ग्वाल तमाचा मारता, रूठ के बैठ जाते, वो बोलता है मैं तेरा गुरु हूं कि नहीं हूं, मेरी आज्ञा मान, बोले कहो, बोले चलो खेलो, नाचना सीखो, सीख रहे लो। ये कैसे भगवान है, छे कोई शर्म, छे कोई हट, छे कोई ईगो, वो जानते सब ग्वालों के रूप में मैं ही तो हूं। उनकी गाय चरती, जब बंसी बजी अपने आप खींच के आती, राम की गाय बंधी रहती, शिव की गाय बंधी रहती, लेकिन कृष्ण की गाय जाओ चरो, बजी बंसी अपने आप खींच के आओ। कैसा मधुमय जीवन है, कैसा रसमय जीवन है, कैसा सारमय जीवन है, और पूरे विघ्न बाधाओं में जूझ रहे। पराये घर लिवा गए ऐसा नहीं, कई बार विघ्न बाधाओं में तो ऐसी हालत हो कि सामान्य आदमी तो रो रो के मर जाए शोक कर करके, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी उदासी की वृत्ति नहीं दिखाई, बंसी बजती रही, गीत गूंजते रहे, हर हाल में खुश। तो हमारा सौभाग्य कि हमें गीता का ज्ञान सुनने को मिलता है और गीताकार की जयंती मनाने का अवसर होता है, और गीताकार को रिमोट कंट्रोल से हम नाच नचाने में भी सफल हो रहे और वो नाराज नहीं होता। ये कैसा देवता है, किसी और मजहब के किसी गुरु के गुरु का पोज बनाकर उस गुरु से आप रिमोट कंट्रोल करके उस गुरु से काम लो तो नाराज हो जाएंगे कि हमारे गुरु गोविंद सिंह से ऐसा करवाया, हमारे गुरु फला, बड़ा बवाल मच जाता है। लेकिन ये गुरु के गुरुओं को तुम कैसे भी नचाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वैष्णवों को ऐतराज नहीं है। अभी नचाएंगे बापू तुम्हारे गुरुओं के गुरु को, लो घूम जाओ उधर देखो क्या कर रहे हैं, घूम रहे कि नहीं घूम रहे, आप इधर ये करो, देखा अब ये करो, हाथ ऊंचे कर लिए, हाथ नीचे करो, कैसे आज्ञाकारी भगवान बन जाते। अब उधर कृष्ण तुम चक्र चलाओ, जल्दी करो लाला, बोलो कृष्ण कहने में मटकी फूटी धड़ाक से, ठहरो रुको, अब रुक जाओ, चक्र चलाया मटकी फोड़ दी, मेरे कहने से फोड़ी और वो भी रिमोट कंट्रोल से। है कोई देव को कोई चिंता है, कोई फिक्र है कि मेरी इज्जत गई, मैं रिमोट कंट्रोल वाला बन गया इतना बड़ा भगवान, कई वांधो नहीं। नारायण हरि, फिर से राम जी। कृष्ण जी अभी मटकी फुलवाऊंगा इन देवताओं से, अब आपने जो ज्ञान सुना है अभी तो एक मटकी का नमूना दिखाया आपको, कई तुड़वाऊंगा उस लाले से, ऐसे चुप नहीं बैठने देता हूं। उस गोप ने कितनी प्रेड ले ली तो भी हम भी ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय
वासुदेवाय,
प्रीति देवाय
प्रीति देवाय,
भक्ति देवाय
भक्ति देवाय,
माधुर्य देवाय
माधुर्य देवाय,
मम देवाय
मम देवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।